फिर इसके बाद देखिए नबी सल्लम का अमल क्या था, अपनी अजवाज को उठाते थे, शोहर और बीवी दोनों मिलके अगर इस रात में इबादत कर लें, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन कोई नहीं। हबीब बिन अबू मोहम्मद थे, अपनी बीवी जो कि खुद भी बहुत नेक थी ये भी थे, जब रमजान की आखिरी रातें शुरू होती तो उनकी बीवी इनसे कहती, रात चली गई और हमारे सामने बहुत तवील रास्ता है और ज्यादे राह बहुत थोड़ा है। सलफ सालेहीन के काफले हमारे आगे चल गए और हम पीछे रह गए। यानी बीवियां कैसी थी, अपने मर्दों को मोटिवेट करती थी कि देखना दूसरों ने नेकी में हमसे आगे निकल जाना है और हम पीछे। आज कहाँ ऐसी बीवियां और कहाँ ऐसे शौहर जो एक दूसरे को इबादत के लिए जुगाएं, जिनको ये एहसास हो कि आखिरत बड़ी तवील है और ना ख़त्म होने वाली है और ये दुनिया कितनी इकट्ठी कर ली। अगर आज की औरत के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए वो कभी भी अपने आप को ज़ाया ना करे। फिर आप देखिए कि रमज़ान जैसे जैसे अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ता है उनको ये ख्याल शुरू हो जाता है कि हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सके, हमने इसकी कदर नहीं उतारी। फिर इसी तरह से अबू कलाबा रहमहुल्ला एक बुजुर्ग गुजरे, रमजान के आखिरी दिनों में अपनी सबसे खूबसूरत लौंडी को इस उम्मीद पर आजाद करते कि अल्लाह इस अमल की वजह से मुझे जहन्नुम की आग से आजाद करेगा। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकु, तो क्या पता चला कि सदका भी देना चाहिए, मनपसंद चीज़ को कोई एक अच्छा सा जोड़ा निकाल दीजिए, कोई अपनी चीज़ों में से कोई ये कहकर कि अल्लाह आज मैंने एक चीज़ दी तो ये मुझे कितनी देने का अजर मिलेगा। आज एक रात में दिए, हो सकता है 1,000 रातों में देने का फायदा होगा, लेकिन ये सब कब होता है? जब आंखों में जन्नत मचल रही हो, जब सामने दिख रहा हो कि ये सब कुछ, जब आरजी दुनिया थोड़ी बहुत है इसमें गुजारे को रख लीजिए, असल वो चीज है आगे, जब जहन्नुम का तनूर नजर आता है और जब इंसान को उसकी गर्मी दिखती है तो फिर इंसान नफ्स की और शैतान की बातों को कभी नहीं मानता। और हजरत अली का अमल क्या था रजी अल्लाह अन्हु, वो क्या कहा करते थे, कहते थे कि तुम्हारे पास इस दुनिया में जीने का क्या है, यानी बहुत थोड़ी चीज़ें रह गई हैं, तुमने अपने आप को इस दुनिया में माइल करना है या तुमने आगे लेकर चलना है, यानी जितना इल्म होगा उतना आप इस चीज़ की बेहतरीन कदर करेंगे। इसकी कदर किस तरह होती है कि आप इसके एक एक मिनट का हक अदा करें, फालतू नहीं बैठना, ज़ाया नहीं करना। टाइम वेस्टर्स अपने सारे जमा करके देख लीजिए किस तरह से है, और फिर आप देखिए कि हमारे सलफ पर ईद के दिन गमदारी हो जाता। क्यों? लोग कहते हैं कि देखो आज तो खुशी का दिन है, आज मुसरत का दिन है, कहते थे आपने कहा तो सच है पर मसला यह कि मैं गुलाम हूँ और मेरे आका ने मुझे कुछ करने को हुक्म दिया था पर मैं नहीं जानता कि मैं ऐसे कर सका हूँ कि उसने कबूल किया कि नहीं। यानी रमज़ान की इबादत पे फ़ख्र क्या, मान क्या, तकबर क्या, गम ये लगता था कि अल्लाह ताला हमारी इबादत को ज़ाया ना करे। इसलिए हमारे असलाफ में कुछ लोगों का अमल क्या था कि रमज़ान से 6 महीने पहले ही इंतज़ार शुरू कर देते थे और दुआ करते थे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचाना, और जब रमज़ान के महीने में इबादत खूब कर चुके होते तो उसके गुजरते ही अगले 5 महीने में ये दुआ करते रहते कि अल्लाह जो नेकियाँ की हैं इसको कबूल कर ले। कहाँ मान, कहाँ फ़ख्र, कहाँ तकब्बुर। इसी तरह वो है बिन विर्द, एक दिन ईद का दिन था, लोगों को हंसते हुए देखा, खुश हो रहे हैं लोग, लेयर मूड में है, कहने लगे अगर इनके रोजे कबूल हो गए हैं तो ये शुक्र करने वालों का तरीका नहीं कि इस तरह मुंह खोल खोल के हंसें और फन करें और जो भी है, और अगर इनके रोजे कबूल नहीं हुए तो डरने वालों का भी ये तरीका नहीं। यानी आप देखिए उनकी खशियत देखें, ये नहीं मतलब कि अब ईद वाले दिन हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहने का मतलब यह है कि जिस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो क्या है कि हमारे पास अमल का वक्त है। अब सवाल पैदा होता है कि हमने जाग लिया, नफिल पढ़ लिए, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, मौका दिया, हमने ये काम किया, अब आगे क्या करें, इसके अलावा क्या करें? तो पहली बात वही बात कि लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश करें। इसकी कुछ निशानियाँ भी हैं हदीस में, ठंडी रात होती है, इस रात में एक अजीब सा सुकून होता है, जिन इलाकों में कुत्ते होते हैं वहाँ कुत्ते भौंकते नहीं हैं। आज सुबह आप सूरज देखिएगा, आपको मैं निशानियाँ बता रही हूँ और ये सही रिवायत से मिलती हैं, फरमाया कि लैलतुल कदर की निशानी क्या है कि जब अगले दिन सुबह होती है तो सूरज में शुआएँ नहीं होती, क्योंकि अभी तक फरिश्ते होते हैं, सूरज और ज़मीन के बीच में फरिश्ते होते हैं। तो ये आज सुबह आपने भी देखना, मैंने भी, और एक ठंडक का एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह जिसको चाहे दिखा दे, जिसको बताए। अभी आज ही मुझे किसी मतलब बहुत ही अपने हमारे, तो उन्होंने इतकाफ में, तो वहां अपना किसी कमर को उनको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया है कि आज की रात लैलतुल कदर है, और वो सारी निशानियां उनको बता रहे हैं। तो अल्लाह जिसको जो चाहे, इस तरह आपने अपनी नानियों दादियों से कई ऐसी बातें सुनी होगी। खुद हमारी अपनी नानी रात के वक्त में अंधेरे में इबादत कर रही थी, बिल्कुल अपने जैसे, उनका एक तख्त पोश होता था इस तरह से कोने में, आज भी मेरी आंखों के सामने उसका है। तो वो उनके ऐसे जोड़ थे जहां जो भी ना, तो इस तरह हड्डियां थोड़ी थोड़ी बड़ी थी, एकदम उनको एकदम ऐसी कोई लाइट, यानी अब वो मैं वो सुनाऊंगी तो अब ये इसको कोई मिसाल ना बना लीजिएगा, लेकिन मैं ये बात सिर्फ इसलिए सुनाने लगी हूँ कि अल्लाह चाहे तो निशानी देता है। बस रिवायत में आता है कि जिब्राइल मुसाफहा करते हैं, शेक हैंड करते हैं ऐसे लोगों को। दिलों को पाक रखिए, रिस्क को पाक रखिए, पेट पाक हो, शर्मगाह पाक हो, जब आप साफ सुथरा बर्तन बन जाएंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बना देगा। फिर आप देखिए कि इसमें जो एक और बहुत ही प्यारी बात जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के पूछने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अगर मैं लैलतुल कदर को पाऊं तो क्या मांगू। आपके भी जहन में ये सवाल होगा। अब आप जरा सा सोचिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा होगा, 100 नफिल पढ़ो। अच्छा मांगू क्या, बेटा मांग लो, औलाद नहीं है, औलाद नहीं थी उनके पास, बेटा भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी, चल आयशा थोड़ी दौलत ही मांग ले, तेरा घर छोटा सा, घर बड़ा मांग ले। नहीं, आयशा जब तुझे लैलतुल कदर नसीब हो तो दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फाफ अन्नी, के अल्लाह तू माफ करने वाला, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। सुभान अल्लाह, कभी आप इस दुआ के एक एक लफ्ज पे गौर करें ना, तो एक लफ्ज है मुआफी, दूसरों को माफ करें। आज की रात में आप सबको, जिसको कहना चाहिए कि रिक्वेस्ट कर सकती हो, आप अपने ऊपर रहम करें। अगर अभी इस रात की चंद घड़ियां बाकी हैं, तो दिल में चुपके से अल्लाह से बात करके जिसके लिए दिल में गुस्सा गिला उसको माफ करें, क्योंकि अदरवाइज कीना दिल में होता है, इबादत कबूल नहीं होती। फिर इसके बाद जो चीज आप और मैं अल्लाह से मांगते हैं, हम वो दूसरों को नहीं देंगे। तो पढ़े जरा मिलके, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नका बेशक तू अफुवन माफ करने वाला, दरगुजर फरमाने वाला, तोहिब्बु तू मोहब्बत करता है, अफवा माफ करने से, फाफु पस माफ कर दे अन्नी मुझको। कितना बोझ हल्का हो जाता है, कितना बोझ हल्का हो जाता है इस बात से जब एक बंदा अल्लाह पर नजरें लगाता है। तो आपने अपने दिल के अंदर इस चीज को रखना है कि मैंने किसी के बारे में दिल में कोई ग्रज, कोई गुस्सा नहीं रखना। देखिए हमारे दिल का बर्तन ऐसा होगा कि हम उसमें गंदगी रखें, नहीं, दिल पाक रखें, दिल भर के दुआएं मांगे, 4 नफिलों में खूब कुरान पढ़ लें। इसके आप कई तरीके हो सकते हैं, आप अपनी सहूलत के लिए कुछ भी कर लें। देखिए बास कहते हैं कि कुरान 3 दिन से कम में नहीं पढ़ सकते, लेकिन लैलतुल कदर की जो आखिरी रात है ये एग्जेम्प्टेड है, मुस्तस्ना है। हमारे असलाफ में कुछ लोग 3 रातों में कुरान पढ़ लेते, बास 2 रातों में कुरान पढ़ लेते थे। ये तो उनकी बातें थी, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ने इतनी ईमानी और रूहानी कुव्वत रखी हुई थी। तो कुरान कसरत से पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें, सुने भी, पूरी रात के आप मुख्तलिफ हिस्से बना सकती हैं। मसलन आप देखिए कि आप इस तरह से दुआ कर सकती हैं कि 2 नफिल पढ़ लिए। अब आपको जुबानी नहीं आता कुरान, ठीक है, हम हाफिज नहीं है, कुरान पाक खोल के पढ़ लें, नफलों में, सुन्नतों में, तरावी में देख के कुरान पढ़ा जा सकता है, दलाइल मौजूद है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कुरान को थोड़ा सा उठाने रखने के लिए हल्की फुल्की हरकत करनी पड़े, कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अब आप खुद अपना अमल करें। आज आपको इधर बुलाने का मकसद भी यही था कि आपको तरीकेकार सिखा दिया जाए, फिर आपको जो तरीकाकार अच्छा लगे। जो नहीं करना, सोशलाइजिंग के नाम पे वक्त ज़ाया नहीं करना, कहीं जाने और आने के नाम पर इस तरह के अपने टाइम में बेकार चीजें नहीं शामिल कर लेनी कि जिसकी वजह से आप घर में होते तो खुशियों करते। अगर घर में सुकून से अकेले में इबादत का सुकून मिल रहा है, घर में कीजिए। आपको लगता नहीं घर में सो जाती हूँ, नींद आ जाती है या मजा नहीं आता, तो मस्जिद में चले जाए। मस्जिद नहीं है तो जैसे आज हम सब मिलके बैठे हैं, अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई जगह है जहां आप इस तरह का कोई काम करें, वहां चले जाएं। फोकस इस पे रखिए किस तरीके से मेरा खुशु और खुजू ज्यादा होता है। हर बंदे का एक अपना तरीका होता है, उसको मुख्तलिफ तरह से ये चीजें मिलती हैं। आप देखेंगे कि जब आप इन 10 रातों में चलिए 10 नहीं तो कम से कम 5 तो कर सकते हैं, जिसको हम ताक कहते हैं। आप इन 10 रातों में अपने आप को जरा सा स्पिरिचुअली करीब करके देखें। शुरू करें, एक एक पारा घर में जाके पढ़ें, आप पढ़ के देखिए। अगर आपको खड़े होकर पढ़ना मुश्किल लगता है, बैठ के पढ़ लें। अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करें, सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद जो ही आप आगे से सूरह बकरा शुरू करें, बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, जहां भी बैठ सकते हैं। फिर जब महसूस हो कि अब आपको तरावी, आपको रुकू में जाना है, कुरान पाक साइड पे कीजिए, उसके बाद पढ़ लें। जितना आप खुद अपने अमल पे स्पिरिचुअली अल्लाह का कुर्ब लेंगे, उतना फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, खवातीन एतकाफ में कैसे बैठें, क्या करें? तो देखिए, सीधी सी बात है, जो मसनून एतकाफ है वो 10 दिन का, जो रमज़ान में करते हैं, जो अल्लाह के नबी ने किया, जो सहाबा ने किया, वो तो 10 दिन का, उसके लिए तो मस्जिद की शर्त है। लेकिन अब आप बच्चों वाली हैं, आप नहीं जा सकती, आपके करीब कोई मस्जिद नहीं है, आप किसी मस्जिद में जाती हैं तो कोई खाना नहीं दे सकता, मजबूर, क्या करें? आप यहाँ बैठे ना अभी, अब मुझे पता था कि हमारा ये आज का सेशन 1 घंटे का है, तो मैं यहाँ बैठते हुए नियत कर लेती हूँ कि मैं इसे 1 घंटे का इतकाफ बैठ रही हूँ। आप किसी एक नमाज से दूसरी नमाज का इतकाफ करें। इसमें आप लोगों को ना भी बता सकें कि मैं इस साल इतकाफ बैठी हूँ और मेरे लिए फूल लेकर और हार लेकर आओ, लेकिन आपको अल्लाह अजर देगा। तो नेकियां नापी और तोली नहीं जाती। हमारा मसला ये है कि हम गिनने के शौकीन हो गए, तो आप किसी वक्त में, बस मैंने इस वक्त उठना नहीं है, मैं इस काम को कर रही हूँ, लेकिन उसमें वो फिर सारी पाबंदियाँ नहीं होती जो असल इतकाफ की हैं, क्योंकि आपको शायद अंदाज़ा है कि असल इतकाफ की इतनी पाबंदियाँ हैं कि खुदा ना खास्ता कोई घर का बंदा भी मर जाए तो उसके जनाजे के लिए भी नहीं जा सकते, कोई बीमार हो जाए उसकी इताअत, उसको देख नहीं सकते। मैं मसाइल पे तो बात ही नहीं करती, लेकिन मसाइल मौजूद है। इतकाफ से बंदा किसी ऐसी मजबूरी के बगैर निकल ही नहीं सकता कि जिसके बगैर उधर गुजारा ही नहीं है, तो फिर इतनी पाबंदियों में रहकर उसको निभा ना सकना, तो बेहतर नहीं कि खुली इबादत कर ले, आप घर बैठ के इबादत करें। एतकाफ का नाम लेके आपने क्या करना है? जैसे मुझे किसी का सवाल आया कि जी फलां अपने बच्चों के लिए खाना पका सकते हैं एतकाफ में, तो भाई अब देखिए, एक औरत अगर घर में है और एतकाफ में है, और फिर उसको खाना भी बनाना है, फिर उसको बर्तन भी धोने हैं, किचन भी साफ करना है, राइट? तो वो तो वैसे भी करेगी, नियत तो अल्लाह ने अजर पे देनी है। तो ऐसी औरतों को फिर तकल्लुफ में पढ़कर, अपने बच्चों को भूखा छोड़कर या घर वालों को परेशान करके इबादत करके वो खुशियों नहीं मिलेगा जो कि उसको दूसरी तरह से मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, नाम ना रखें, काम करें। आप एतकाफ में बैठे हैं नहीं बैठे, दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि आखिरी चीज जिस पे हम आज बात कर सकते हैं, और वो क्या है कि जो औरतें पीरियड्स हैं वो क्या करें। ये भी हमारे एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अमूमन जो औरत पीरियड से होती है उसके बारे में ये आता है कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। नमाज के सिवा वो सब कुछ करेगी। जिक्र अस्कार करें, आप पूरी रात के हिस्से बांट लें कि आज मैंने 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करनी है, मैंने 50 दफ़ा फलां कलमा पढ़ना है। खुशू के साथ, खुदू के साथ करें। खुद कुरान पढ़ने में शक आता है ना, तो सुन लें, आप और मैं आज से एक नियत कर लें, रमजान के शुरू में भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर कर लेते हैं कि इन 10 रातों में मैंने किसी एक अच्छे कारी की आवाज में कुरान सुनना है, जो स्पीड जिसका आपको अच्छा लगता है। आपने करना बस ये है कि जब वो तिलावत चलेगी, साथ काम भी कर रहे हैं तवज्जो तो रखें। हाँ, नहीं करना तो बीच में बोलना नहीं है। अगर कहीं कोई बोलने लग गया या कहीं आप उसके साथ बोलने लग गए, तो फिर आप क्या करेंगे, उतनी देर में उसको रोक लें, जहां रुके लिख लें, अगली दफा वहीं से शुरू करें। तो इन 10 दिनों में हम एक सुनने वाला कुरान भी कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर इसी तरह से आप देखिए कि आज एक लिंक शेयर हुआ है हमारे ग्रुप्स में, अल्लाह की तौफीक से हुआ था। लास्ट ईयर मैंने रमजान की तरावियां जहां पढ़ी, तो उसके बाद फिर हर रोज उस पारे का खुलासा कराया था, 15 मिनट का पूरा, 15 मिनट में एक पूरे पारे की समरी। जैसे अब दौरे कुरान में तो तकरीबन 2.5 से 3.25 घंटे में होता है ना, उसमें एक 15 मिनट का था। अब वो 30 पारे रिकॉर्डेड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वेबसाइट पे, ऐप के ऊपर भी मौजूद है। आप में से किसी को चाहिए, आपको लिंक दिया जाता है। 3 दिन सपारे करके आज से लेकर 29 तक सुन लीजिए। 3 सपारे भी आप एक दिन में सुनेंगे सिर्फ 45 मिनट, 15 मिनट में एक पारा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इतनी मुख्तलिफ चीज़ें कैसे, तो आप याद रखिएगा कि जब वैरायटी होती है ना तो दिल लगा रहता है। बस अगर मैं यहाँ बोलती ही रहूँ, आपको 2-2.5 घंटे बैठना पड़े, तो बावजूद ख्वाहिश के आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 15-20 मिनट, आधा घंटा बोल ली, फिर उसके बाद बीच में आपको कोई तिलावत सुना दें, बीच में कोई वीडियो दिखा दें, चलिए जाइए स्ट्रेच ले लें, तो आप 6 घंटे भी बैठेंगी तो पूरी रात बैठ के ना तो हम नफिल पढ़ सकते हैं, नहीं खुशू रहेगा, पूरी रात हम बैठ के कुरान भी नहीं पढ़ सकते, पूरी रात बैठ के आप दुआएं भी नहीं कर सकते। तो करें क्या, अपना गोल बना ले, इसके प्लानर्स बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथी ग्रुप्स में शेयर भी करते रहते हैं और भी कर सकते हैं आप पूरी रात में। मसलन जैसे मैंने तरतीलुल कुरान की बात की है, एक सपारा तहज्जुद में पढ़ें, फिर उसकी 15 मिनट के बाद उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, स्ट्रेच भी हो जाएगा उसमें, रिकॉर्डिंग सुनते हो बेशक आप सोफे पर लेट जाएं, पाँव कमर टिका लें, कुछ भी कर लें, जो पारा पढ़ा उसी की आपने तरतीब से वो सुन ली। और क्या करें, पकड़िए फैनी करीब बुक, उस पारे की दुआएं पढ़ लें पूरी रात में, पूरे कुरान की दुआएं पढ़ लें, को मुश्किल है, मैंने खुद पढ़ के देखी हुई है। अगर आप पूरी सूरत फातिहा से लेकर 28वें पारे की आखिरी दुआ तक पढ़ें, यकीन करें आप देखें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। तो क्या अगर मैं और आप आज की रात में पूरी कुरानी दुआएं रब्बन आतिना, और जिसके पास फैनी करीब है उसके लिए तो तरतीब भी मौजूद है, कुरानी दुआओं के नाम पे चीज़ें मिलती हैं, मसनून दुआएं हैं, तो कुछ वक्त दुआओं का, कुछ कुरान का, कुछ नफिल का। अब आप कहते हैं सब कर लिया, आप थक गए, कुछ सुन लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है, आपने बस इस तरीके से अपने आप को इसमें यूज़ कराना है कि आप इबादत को इंजॉय भी करें, बोर नहीं होना। अब आप कहते हैं अच्छा जी घर वालों की सहरी बनानी है, तो कौन कहता है ना बनाए, हमारे दीन का यही हुसन है कि इसमें इबादत बन जाता है, खाना पकाना काम करना। करें क्या, बच्चों को भी पहले से कह दें कि मैं आपका खाना बना रही हूँ लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं इस दौरान दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, कम बोलना है। और हमारे देखिए केयरलेसली हमारी बातें होती हैं, खाने पर तनकीद शुरू हो जाती है, नखरे निकलते हैं। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाना होता था ना, पीछे कर देते थे, क्यों नहीं खाए, चुप, खैरियत नमक से चुप, कब ना नखरे किए ना नक्स निकाले। सहाबा कहते हैं कि जब आप ना खाते तो हम खुद ही समझ जाते कि इनको नहीं खाना, लेकिन हम खा भी रहे होते हैं, ऐसा कहते हैं नमक ठीक नहीं, मिर्च ठीक नहीं, भुना नहीं, कच्चा नहीं, इससे भी ज़्यादा कोई नाशुक्री होगी। तो लिहाजा आप अभी सहरी सब बनाएं, खाएं पिएं, लेकिन फालतू वक्त ज़ाया ना करें, दुआएं चला लें। आजकल इतने माशाल्लाह ऐप्स हैं फ़ोन पे दुआओं के, आप एक एक ऐप शुरू कर दें, एक दुआएं तहज्जुद की दुआएं हैं, फिर आप देखिए कि सब्र की दुआएं, बीमारियों की दुआएं, फिर आप कुछ वक्त रखें अपनी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए दुआ करें, बहन भाइयों को याद करें। हम तो अब इतने मसरूफ हो गए हैं कि अल्लाह रहम करे कि हमें अब बस वही 2-4 रिश्ते ही हैं जो करीब के, वही याद आते हैं। अपने फौजशुदा लोगों के लिए दुआ करें, आधी रात पूरे रात में 15 मिनट रख लीजिए कि मैंने सब अपने तसव्वुर में ला के ना 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 नी दा 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 दी, जिनको हम जानते हैं या नहीं तो ऊपर कह दीजिए अल्लाह, जो उनके भी बाप दादा थे, और जो आते फिर एक एक का सोचें, अच्छा मामू चले गए, अच्छा फलां चाचा चले गए, अच्छा ये चले गए, आप उनकी दुआएं मांगें, आप देखेंगे कि एंड ऑफ द नाइट आप सुबह उठेंगे आपका दिल खुशी से भर रहा होगा कि आज एक रात में मैंने इतना कुछ कर लिया, और आम दिनों में मैं सो के गुजार देती हूँ और हम कहते हैं नींद ही नहीं पूरी हुई। तो बस ये चंद बातें थी, अब चले आई दुआ कर लेते हैं छोटी सी। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वज्हिका वअज़ीम सुल्तानिक, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين ثم آمين.